गाथा में आप सुन रहे हैं इदरीस नासिर की लिखी कहानी कत्ल का गवाह। मैंने कॉफी बनाकर मेज पर रखी। मैंने डबल रोटी के टोस्ट काटकर टोस्टर में रख दिए। डबल रोटी मैंने 10 सेंट में खरीदी थी। ये सस्ती इसलिए मिल गई थी क्योंकि यह 2 दिन की बासी थी। मैं तेज कदम उठाते हुए बाहर राहदारी में आया ताकि सुबह का अखबार कुछ देर के लिए आदतन पढ़ सकूं। अखबार वाला रोजाना सुबह 1 कॉपी मेरी मकान मालकिन के दरवाजे के सामने डाल जाता था। अभी मकान मालकिन के उठने और अखबार देखने में 1 घंटा बाकी था, इसलिए मैं अखबार उठा लाया। उसे पढ़कर मकान मालकिन के जगने से पहले वहीं पर रख देना, ये मेरा रोज का काम था। मैं अखबार खोलकर देखने लगा। मेरी निगाह एक खबर पर टिक कर रह गई। मिस्टर तालबोट के मुकदमे की खबर 2 कॉलम में छापी गई थी, साथ में 3 तस्वीरें भी छपी थी। इस मुकदमे से दिलचस्पी की कुछ निजी वजह थी। दिलचस्पी की एक वजह यह थी कि मेरी एक्स वाइफ मुझसे शादी करने से पहले उसकी सेक्रेटरी रह चुकी थी। शादी की कहानी भी बड़ी ही अजीब थी। अभी हमारी शादी को सिर्फ 25 दिन ही हुए थे कि हमारे झगड़ों की शुरुआत हो गई। मुझे याद नहीं कि वो क्या बात थी जब मेरेलियन ने कहा था, तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, मुझे पछतावा होता है, अगर मैं चाहती तो उस शख्स से भी शादी कर सकती थी। मेरेलियन का इशारा यकीनन तालबोट की तरफ था। मेरा ख्याल है कि मेरेलियन इसमें कामयाब भी हो सकती थी, बस मुश्किल ये थी कि तालबोट ने उस वक्त तक अपनी दूसरी बीवी से तलाक हासिल नहीं किया था। मैंने उस खबर को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। खबर ये थी कि स्टफोर्ड तालबोट की एक्स वाइफ जेन तालबोट अप्रैल की 1 सुबह अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई हैं। किसी ने पिछली रात को उनका गला घोटकर उन्हें मार दिया है। इस हादसे से 1 दिन पहले यानी गुरुवार को एक नाइट क्लब में उनकी और मिस्टर तालबोट के बीच जबरदस्त तकरार हुई थी। लोग क्लब में होने वाले स्टेज शो को देखना भूलकर उनका झगड़ा देखने लगे थे। उसके अगले दिन यानी शुक्रवार की रात को 2 लोगों ने एक शख्स को जेन के घर जाते देखा। उस शख्स का हुलिया मिस्टर तालबोट जैसा ही था। पुलिस सर्जन के मुताबिक मौत और उस शख्स के घर जाने का वक्त तकरीबन 1 ही है। रात के घने अंधेरे में लोग उस शख्स को पहचान नहीं सके थे। खबर के मुताबिक एक औरत ने जेन के मकान के बाहर खड़ी हुई कार की नंबर प्लेट के आखिरी 3 नंबर भी देखे हैं, जो खुद उसकी अपनी कार के हैं। इत्तेफाक से जो कार मिस्टर तालबोट के पास है उसके आखिरी के 3 नंबर भी वही हैं। इसके अलावा मिस्टर तालबोट की उंगलियों के निशान भी जेन के फ्लैट में जगह जगह मिले हैं। इस बारे में तालबोट का कहना है कि वो इस घटना से 1 दिन पहले जेन से मिलने उसके घर गया था। एक अहम पहलू यह भी है कि मिस्टर तालबोट को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। गुस्सा भी ऐसा जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वो इस हालत में कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर तालबोट का बयान था कि वो शुक्रवार की रात को अपने घर पर और अकेला था। खबर में ये सब कुछ बताया गया था। मुझे मिस्टर तालबोट की बात पर यकीन था। इसकी वजह यह थी कि अगर मिस्टर तालबोट ने अपनी एक्स वाइफ का कत्ल किया होता तो उसका वकील उसे कोई बेहतर और यकीन होने लायक कहानी तैयार करके देता। ये जानने के बावजूद कि उसके इस बयान से उसे अपनी सफाई के लिए कोई मदद नहीं मिलेगी, दूसरे उसे इस कत्ल के जुर्म में इतनी लंबी मुद्दत की सजा मिल सकती है जिसमें उसकी जिंदगी के कई खूबसूरत साल बर्बाद हो जाने थे। मिस्टर तालबोट अगर अपने बयान पर कायम था तो मुझे इसकी वजह यही लग रही थी कि वो सच बोल रहा था। दूसरी तरफ कानूनी नुक्ता नजरिए से अभियोजन के केस भी बहुत मजबूत नहीं था। البتہ اخبار نے عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی مسٹر تالبوٹ کو قاتل قرار دے دیا تھا۔ اخبار لگاتار ایسی خبریں چھاپ رہے تھے کہ عدالت اس معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے کرے۔ عدالت مسٹر تالبوٹ کی دولت اور اثر رسوخ سے پربھاوت ہو کر اسے معاملے سے بری نہ کرے۔ ایسے حالات میں یہ ممکن تھا کہ زیوری کے سدسیہ عام لوگوں اور اخبارات کی رائے کے مطابق ہی اپنا فیصلہ سنا دیں۔ تیسرے پکش کے طور پر میں نے بھی اپنا فیصلہ کر لیا تھا کہ تالبوٹ کو اس مقدمے میں ہرگز ہرگز سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ناشتے وغیرہ سے نپٹنے کے بعد میں نے کپڑے بدلے، اخبار کو مالک مکان کے دروازے کے سامنے رکھا اور پیدل ہی اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا دفتر وہاں سے تقریباً 3 میل کی دوری پر تھا۔ پیدل چلنے کے 2 بڑے فائدے تھے، ایک تو اس بہانے تھوڑا چہل قدمی ہو جاتی تھی، دوسرے بس کے کرائے کے طور پر 30 سینٹ بچ جاتے تھے۔ میری اب تک کی باتوں سے اگر آپ نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ میں بہت کنجوس آدمی ہوں اور ایک ایک سینٹ دانتوں سے پکڑ کر خرچ کرتا ہوں، تو اس میں آپ کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا میرے حالات کا۔ ادھر کچھ عرصے سے میرے مالی حالات بس کچھ ایسے ہی چل رہے تھے۔ پھر یہ کہ دولت ہی وہ سب سے بڑی وجہ تھی جو میرے اور میریلین کی جدائی کا سبب بنی تھی۔ میں ایک وکیل ہوں اور میری سالانہ آمدنی 30-32 ہزار ڈالر سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے وپریت میریلین 50 ہزار ڈالر سالانہ خرچ کرنے میں اپنی توہین سمجھتی تھی۔ ظاہر تھا کہ میں کبھی اتنا دولت مند نہیں بن سکتا تھا جو اسے ہر طرح سے خوش رکھ سکتا۔ یہ بھی ظاہر تھا کہ میریلین کسی بھی عدالت سے میری آمدنی کو اپنے خرچوں کے لیے کم بتا کر طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ نتیجتاً اس نے مجھ پر میری سیکرٹری کے ساتھ ناجائز تعلقات کا الزام لگایا، چونکہ اس میں سچائی بھی تھی۔ یعنی میری سیکرٹری سے تعلقات تو تھے لیکن وہ ناجائز نہ تھے۔ انتتہ وہ عدالت سے طلاق لینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس طلاق کے نتیجے میں مجھے اسے اپنا گھر اور کار دینی پڑی۔ میرے دونوں بچے بھی عدالت نے اس کی سپردگی میں دینے کا حکم سنایا۔ نتیجتاً دونوں بچے بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ ان سب کی ذمہ داری چونکہ میرے سر پر تھی، اس لیے مجھے اپنی آمدنی کا بڑا حصہ بھی اسے دینا پڑتا تھا۔ اس پر بھی میریلین کا خیال تھا کہ یہ آمدنی اس کے گزارے کے لیے کافی کم ہے۔ میرے ساتھ ایک زیادتی اور ہوئی، مجھے اس کے وکیل کے سارے قانونی خرچے بھی اٹھانے پڑے۔ ان تمام حالاتوں سے گزرنے کے بعد جو آمدنی میرے پاس بچتی تھی وہ $1200 مہینے سے زیادہ نہیں تھی۔ ان $1200 میں سے مجھے اپنے آفس کے اکاؤنٹنٹ کلرک کو بھی سیلری دینی پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ اپنی سیکرٹری لورین سے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے بھی تھوڑا بہت خرچ کرنا پڑتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیوں 2-3 دن کی باسی ڈبل روٹی کھاتا ہوں اور کیوں اپنے گھر سے دفتر تک پیدل جانے کے لیے مجبور ہوں۔ بہرحال دفتر پہنچ جانے کے بعد میں نے مسٹر تالبوٹ کے وکیل لوئس بریگلر کو فون کیا۔ فون ریسیو ہوتے ہی میں نے کہا، ہلو لوئس، میں گارنٹ بول رہا ہوں، مقدمے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جیت یقیناً ہماری ہی ہوگی، لوئس نے دوسری طرف سے جواب دیا۔ سرکاری وکیل کے کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے۔ لوئس کے شبدوں میں جو حوصلہ نظر آ رہا تھا، اس کی آواز میں ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا تم ایک اور گواہ کو حاصل کرنا پسند کرو گے؟ میں نے سیدھے طور پر پوچھا۔ ایک گواہ؟ بھلا کون وکیل اس سے انکار کر سکتا ہے؟ لوئس نے کہا۔ مگر وہ ہے کون؟ میں خود، میں نے جواب دیا۔ لوئس یہ سن کر کوشش کے باوجود اپنا جوش چھپا نہ سکا۔ اس نے کہا، क्या हम आज दोपहर का खाना साथ नहीं खा सकते? क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया। कुछ दिन बाद अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। सरकारी वकील ने अपना केस पेश करते हुए बहुत समझदारी का परिचय नहीं दिया। हद तो ये हो गई कि वो जेन के एक्स हस्बैंड को ये साबित करने के लिए पकड़ लाया कि जेन अपने मिजाज के हिसाब से मर्दों को गुस्सा दिलाने में माहिर थी। अब बचाव पक्ष के वकील लुइस की बारी थी। लुइस ने सबसे पहले खुद तालबोट को गवाहों के कटघरे में खड़ा किया। मिस्टर तालबोट ने स्वीकार किया कि मुमकिन है कि इसी गुस्से के दौरान उसने कभी अक्सर जेन को यह धमकी दी हो कि वो उसकी गर्दन तोड़ देगा या गला घोंट देगा। तालबोट ने साथ ही अदालत में सफाई देते हुए कहा कि ऐसी धमकी देने के पीछे कोई गंभीर मकसद कभी नहीं था। उसे तो ये भी याद नहीं है कि क्लब में उनका झगड़ा किस बात पर हुआ था। बचाव पक्ष के वकील लुइस ने तालबोट को गवाहों के कटघरे में खड़ा किया तो उसने अपनी बेगुनाही में कहा कि वो बेकसूर है। हो सकता है उसने ऐसा कुछ कह दिया हो, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि वो सचमुच उस पर अमल करने का इरादा रखता है। शुक्रवार की रात को वो अपने घर में बिल्कुल अकेला था और टीवी पर कोई फिल्म देख रहा था। फिल्म देखते ही देखते वो कुर्सी पर सो गया था और अब उसे कुछ याद नहीं कि इस फिल्म का नाम क्या था और वो किस बारे में थी। सरकारी वकील पूरे 50 मिनट तक उससे जिरह करता रहा। अपने तमाम सवालात से वो ना तो मिस्टर तालबोट के सुकून भरे रवैये को ही खत्म कर सका और ना ही उसकी जुबान से कोई ऐसी बात उगलवा सका जो उसके बयान को गलत साबित कर सकती। जहां तक मेरा अंदाजा है, उस वक्त तक ज्यूरी के सदस्य मिस्टर तालबोट को ही कातिल मान रहे थे। बचाव पक्ष के वकील लुइस ने मिस्टर तालबोट के बाद अपने दूसरे गवाह को पेश किया। वो गवाह और कोई नहीं, मैं था। मेरा बयान बहुत सादा और साफ था। मैंने बताया कि मिस्टर तालबोट ने मुझसे कहा था कि क्या मैं उनकी फर्म के इनकम टैक्स के मामलात की देखभाल कर सकता हूँ। मेरी पत्नी ने चंद माह पहले मेरा परिचय मिस्टर तालबोट से कराया था। मिस्टर तालबोट को जब पता चला कि मैं इनकम टैक्स के मुकदमे देखता हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी किसी भी वक्त इस मामले में बातचीत करने के लिए उनके घर आ जाऊँ, क्योंकि वो इनकम टैक्स के कागजात वगैरह अपने घर पर ही रखते हैं। शुक्रवार की रात को मैं मिस्टर तालबोट के घर के करीब से गुजर रहा था। मुझे अचानक उनकी बात याद हो आई। उस वक्त काफी रात हो आई थी। फिर मैंने सोचा कि मिलते हुए ही चलता हूँ। इस तरह मैं मिस्टर तालबोट के घर पहुंच गया। मैंने खिड़की से उन्हें एक आराम कुर्सी पर सोया हुआ देखा, जबकि उनके सामने रखा टीवी चल रहा था। मैंने उन्हें सोता देखा तो मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और वहां से बिना मिले ही वापस लौट आया। हाँ, उस वक्त रात के ठीक 11:15 हुए थे। सरकारी वकील ने मुझसे जिरह शुरू की। उसने सबसे पहला सवाल यही किया कि मैं अब तक इंतजार क्यों करता रहा, मैंने ये बात पहले क्यों ना बताई। सरकारी वकील को ये सवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे जवाब ने उसके केस का और कबाड़ा कर दिया। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरे सामने मिस्टर तालबोट की बेगुनाही इस कदर साफ थी कि मुझे कभी ख्याल ही ना आया कि उन्हें मेरी गवाही की भी जरूरत पड़ सकती है। मेरे जवाब पर सरकारी वकील जोर जोर से बोलने लगा और ये बात उसने ज्यूरी मेंबर के रिकॉर्ड में दर्ज करवा दी। लेकिन मेरा जवाब ज्यूरी पर जो असर डालना था वो डाल चुका था। बात यूं थी कि सरकारी वकील काफी काबिल था, लेकिन ऐसा तब होता जब उसने इस केस की अच्छी तरह से तैयारी कर ली होती। जब कभी वो केस की तैयारी ठीक से नहीं कर पाता था तो बेवजह का जोश दिखाकर अपने केस खुद ही खराब कर लेता था। मैंने गवाही से पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उसके सवालात क्या हो सकते हैं। इसलिए मैं सारे जवाबात तैयार करने के बाद ही अदालत के कमरे में दाखिल हुआ था। वो ये साबित नहीं कर सकता था कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हकीकत नहीं है। इसकी वजह यह थी कि उस रात मैं भी अकेला था। कोई भी शख्स मेरे बयान को गलत नहीं ठहरा सकता था। मुकदमे की कार्रवाई खत्म हुई तो जूरी के सम्मानित सदस्य अपने फैसले के बारे में आपस में सलाह मशविरा करने और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए उठ गए। उन्हें एक राय होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो कुछ ही घंटे में ही अपने चैम्बर से बाहर आ गए। इसके बाद जूरी के फोरमैन ने जज साहब को बताया कि ये जूरी मुलजिम स्टानोर्ड तालबोर्ड को बेगुनाह मानते हुए कत्ल के इल्जाम से बरी करती है। मिस्टर तालबोर्ड ने खुशी से बेकाबू होते हुए अपने वकील लुइस से हाथ मिलाया। इसके बाद उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और मेरी पीठ पर शाबाशी के अंदाज में थपकी दी और कहा, अगर मैं कभी भी तुम्हारे काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे पहले कि मैं उनसे ये कह पाता कि वो अपने इनकम टैक्स के मामलात मेरे हवाले कर दें, वो मुबारकबाद देने वाली भीड़ को चीरते और फैले हुए हाथों को नज़रअंदाज करते हुए एक तरफ चल दिए। मैं दिल महसूस कर रह गया कि चलो इस बार न सही, किसी और मौके पर मुझे अपनी बात कहने का मौका ज़रूर मिलेगा। वो लोगों की भीड़ में आगे बढ़ते हुए अदालत के कमरे के पीछे के हिस्से की तरफ जा रहे थे। वहां मेरेलियन उनका इंतजार कर रही थी। मैं उसके होठों पर वही दिलकश मुस्कुराहट देख रहा था जिसे मैंने आखिरी बार उस वक्त देखा था जब वो ऐसे ही किसी और अदालत में अपना तलाक का मुकदमा जीतकर और मुझे कंगाल बनाकर बाहर जा रही थी। मैं खुशदिली से बुदबुदाया, खुदा करे तुम्हें जल्दी ही अपना हनीमून मनाने का मौका मिले। हनीमून हर लिहाज से कामयाब रहे। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरेलियन के साथ तालबोट का रोमांस एक ऐसी चीज थी जिसे मैं उसे सजा होने की सूरत में बर्बाद करना गवारा नहीं कर सकता था। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इस मामले से मुझे जाती दिलचस्पी थी, इसकी एक वजह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। दूसरी वजह यह थी कि अगर मेरेलियन और मिस्टर तालबोट का रोमांस कामयाब रहता है और दोनों की शादी हो जाती है तो इस हालत में उसे मुझसे किसी तरह की कोई रकम वसूल करने का हक बाकी नहीं रहेगा। मैं ये भी जानता था कि उसे मेरी आमदनी से महरूम होने का कोई भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि इसके बदले वो अपने लिए वो सब कुछ हासिल कर लेगी जिसकी उसे एक ख्वाहिश थी। अलबत्ता इससे मुझे बड़ा फर्क पड़ता था। इस तरह से मैं उससे अपने बच्चे भी वापस ले सकता था। मैंने अदालत के कमरे से रुखसत होने से पहले एक बार फिर उनकी तरफ देखा। वो एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे थे। मैंने एक बार फिर उन दोनों की बहुत जल्द शादी की दुआ मांगी, क्योंकि महज इस वजह से ही मेरी अपनी मुफलिसी का इलाज मुमकिन था जिसके लिए मैंने ये झूठी गवाही देने का फैसला किया था। और अब मुझे दो दिन पुरानी बासी रोटी भी नहीं खानी होगी। गाथा में आप सुन रहे थे इदरीस नासिर की लिखी कहानी कत्ल का गवाह। कहानी का संपादन कुमार रहमान का, गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया शेफाली कपूर ने।